दो नवंबर शनिवार बीबीसी इंडिया बोल सुनिए आदर्श राठौर से। क्या मोदी सरकार सरदार पटेल की विरासत को हथियाना चाह रही है या फिर उन्हें इतिहास में उचित स्थान दिलाने का प्रयास है? आप क्या सोचते हैं? इंडिया बोल में इस बार चर्चा पटेल की विरासत को लेकर हो रही सियासत पर। अपनी राय रखने के लिए मुफ्त फोन करें 1811 7000 और 1811 7001 पर। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद रहेंगे वरिष्ठ पत्रकार मधुसूदन आनंद। लेकिन पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार नवीन नेगी से। उत्तर भारत में प्रदूषण का स्तर लगातार बेहद खतरनाक स्तर पर बना हुआ है। राजधानी दिल्ली में फैले इस प्रदूषण की एक अहम वजह पड़ोसी राज्यों में किसानों के पराली जलाने को बताया जा रहा है। इसी मुद्दे पर पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अलग अलग पत्र लिखे हैं। दोनों ने प्रदूषण के मामले में राजनीति ना करने की अपील की है। खट्टर ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों और पर्यावरण मंत्री की बैठक करने की बात भी कही है। भारत दौरे पर आई जर्मनी की चांसलर एंगेला मर्केल ने भारत में 100 करोड़ डॉलर से अधिक के निवेश की घोषणा की है। मर्केल ने कहा कि अगले 5 साल जर्मनी भारत में ग्रीन अर्बन ट्रांसपोर्ट विकसित करने में मदद करेगा। मर्केल ने बताया कि इसके तहत भारत में मौजूद डीजल बसों को इलेक्ट्रिक बसों में बदला जाएगा।
Wir haben beschlossen, die sogenannte deutsch-indische Partnerschaft für grüne urbane Mobilität einzuführen.
जर्मनी और भारत की नई पार्टनरशिप के तहत हम इस बात पर सहमत हुए हैं कि भारत में ग्रीन अर्बन मोबिलिटी पर काम किया जाएगा। इसके लिए हम 100 करोड़ यूरो खर्च करेंगे। इस कार्यक्रम के तहत भारत में 200 पुरानी डीजल बसों को बदला जाएगा और 500 नई इलेक्ट्रिक बसें लाई जाएंगी। ये थी जर्मनी की चांसलर एंगेला मर्केल के शब्द। मलेशिया के प्रधानमंत्री महातिर मोहम्मद ने दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संघ आसियान में मौजूद सदस्य देशों से कहा है कि सभी देश मिलकर ट्रेड वॉर का मुकाबला करें, जिसे अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुरू किया है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में आसियान सम्मेलन की शुरुआत से पहले महातिर मोहम्मद ने यह बात कही है। आसियान पूरे विश्व के लिए एक बहुत बड़ा बाजार है। हम ट्रेड वॉर में नहीं पड़ना चाहते, लेकिन कभी कभी ऐसे हालात बना देते हैं जो हमारे लिए ठीक नहीं होते। तब हमें भी उनके प्रति अच्छा व्यवहार नहीं रखना चाहिए। हम बिल्कुल वही करेंगे जो ट्रंप ने किया। वो अच्छे शख्स नहीं हैं, लेकिन हमें उन्हीं लोगों से सीख मिलती है जो अच्छे नहीं होते। ये थे मलेशिया के प्रधानमंत्री महातिर मोहम्मद के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। हांगकांग में एक बार फिर लोकतंत्र की मांग करते हुए हजारों प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए। इन प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने आंसू गैस और पानी की बौछार का सहारा लिया। इन प्रदर्शनकारियों ने काले कपड़े पहने हुए थे और अपने चेहरे पर मास्क लगाया हुआ था। ताज़ा खबरों के मुताबिक प्रदर्शनकारियों ने कई सड़कों को ब्लॉक कर दिया और एक मेट्रो स्टेशन में आग भी लगाई। सीरिया में विद्रोहियों के कब्जे वाले उत्तर पश्चिम इलाके में हवाई हमले की खबरें आई हैं, जिसमें करीब 6 लोगों के मारे जाने की सूचना है। मरने वाले सभी लोग एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं। ब्रिटेन स्थित निगरानी समूह सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स का कहना है कि यह हमला इदलिब प्रांत के जबाला नामक गाँव में हुआ। निगरानी समूह के सदस्यों का कहना है कि यह हमला रूस की फौज ने करवाया है, जिसे सीरिया की सरकार मदद कर रही है। उत्तर पूर्वी अफगानिस्तान में पुलिस ने बताया है कि एक बम धमाके में 9 बच्चों की मौत हो गई है। मरने वालों में 8 लड़के और एक लड़की है, जिनकी उम्र 7 से 10 साल के बीच बताई जा रही है। ये सभी बच्चे अपने स्कूल जा रहे थे, जब अचानक किसी एक बच्चे का पैर विस्फोटक उपकरण पर पड़ गया। विशेषज्ञों का कहना है कि अफगान फौज ने हाल ही में तालिबान से इस इलाके का नियंत्रण लिया है। इटली की पुलिस का कहना है कि उन्होंने ड्रग्स की तस्करी में शामिल करीब 150 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि उन्होंने सेंट्रल इटली में पेरुगिया नामक इलाके में रेड डालकर इन लोगों को गिरफ्तार किया। इसके साथ ही लाखों की कीमत में ड्रग्स भी बरामद किए गए हैं। दक्षिण अफ्रीका ने तीसरी बार रग्बी विश्व कप अपने नाम कर लिया है। फाइनल मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका ने इंग्लैंड को 32-12 से हराया। बीबीसी समाचार।
नेता बोले, अफसर बोले, पैसा बोला, बंदूक बोली, अभिनेता विलेन बोले, नहीं बोल सके तो बस आप। अब इंतजार खत्म, जुबान पर लगे ताले खोल, बीबीसी इंडिया बोल।
नमस्कार, आपका स्वागत है बीबीसी इंडिया बोल में। मैं हूं आदर्श राठौर। आप इस कार्यक्रम को रेडियो के साथ साथ bbchindi.com और मोबाइल ऐप पर भी लाइव सुन रहे हैं। हमारी टेलीफोन लाइनें खुल चुकी हैं 1811 7000 और 1811027001 पर आप मुफ्त फोन कर सकते हैं। वरिष्ठ पत्रकार मधुसूदन आनंद हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। चर्चा शुरू करने से पहले विषय एक बार फिर से बता दें, क्या मोदी सरकार सरदार पटेल की विरासत को हथियाना चाह रही है या फिर उन्हें इतिहास में उचित स्थान दिलाने का प्रयास है भाजपा के शब्दों में? यह सवाल उठ रहा है सरदार पटेल की विरासत पर हो रही सियासत से। 2014 में सत्ता में आने के बाद से ही मोदी सरकार भारत के पहले गृहमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाती है। इस बार भी 31 अक्टूबर को सरदार पटेल की 144वीं जयंती पर एकता दिवस मनाया, लेकिन कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ सरदार पटेल की एक तस्वीर ट्वीट की और लिखा कि सरदार पटेल कांग्रेस के निष्ठावान नेता थे जो कांग्रेस की विचारधारा के प्रति समर्पित थे और आरएसएस के सख्त खिलाफ थे। उन्होंने ये कहा कि आज भारतीय जनता पार्टी जब उन्हें अपनाने की कोशिश करती है तो खुशी होती है, क्योंकि उनका अपना कोई स्वतंत्रता सेनानी महापुरुष नहीं है। और दूसरी बात, सरदार पटेल जैसे महापुरुष को एक न एक दिन उनके शत्रुओं को भी नमन करना पड़ता है। प्रियंका गांधी के इस बयान पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी कड़ी प्रतिक्रिया आई और ये कहा कि कांग्रेस की तो सरदार पटेल में आस्था ही नहीं है। तो एक तरफ कांग्रेस लगा रही है मोदी सरकार पर पटेल की विरासत हथियाने का आरोप और दूसरी तरफ भाजपा का कहना है कि वो पटेल को वो स्थान दिलाना चाह रहे हैं जिसके वो हकदार थे, मगर कांग्रेस की सरकारों ने उन्हें वो दिया ही नहीं। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार मधुसूदन आनंद। इससे पहले कि कार्यक्रम में हम श्रोताओं की टिप्पणियों को शामिल करें, आपसे जानना चाहेंगे क्या है ये?
देखिए, कुल मिला के बात इतनी है कि जो सम्मान और जो इतिहास में उनका स्थान है सरदार पटेल का, उसको देने के प्रति कांग्रेस में एक तरह की उपेक्षा का भाव रहा। कब जाकर उनको भारत रत्न की उपाधि दी गई और कब जाकर राजीव गांधी को भारत रत्न दे दिया गया, ये सारी बातें अपनी जगह सही है। लेकिन अगर ये कहना चाह रहा है कोई कि जो सरदार पटेल हैं उनका अवदान वो कांग्रेस पार्टी से बाहर निकल के सबके लिए है, वो है सबके लिए, लेकिन वो किसी दूसरी विचारधारा से पोषित नहीं होता। विचारधारा जो उसके पीछे है वो कांग्रेसी विचारधारा है। नेहरू के साथ उनके मतभेद रहे, उन मतभेदों को कभी छुपाया नहीं गया। नेहरू के हर कदम पर जिससे वो असहमत थे उन्होंने पत्र लिखा, कई बार त्याग पत्र भी दिए, गांधी जी ने बीच बचाव भी किया। और लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि जब गांधी जी की हत्या हो गई तो नेहरू ने एक पत्र लिखा सरदार पटेल को कि हम मिलजुल कर भारत का आगे निर्माण का कार्य करेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरह से पहले आप मुझे समर्थन करते रहे हैं और हमें कांग्रेस को करते रहे हैं, ऐसे ही आप आगे भी करेंगे। तो उन्होंने लिखा कि मैं इस आपके पत्र से बहुत ही ज़्यादा हर्षित हो गया हूं और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं ऐसा ही करूँगा और जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम के मूल्य हैं उन मूल्यों के साथ हम काम करेंगे। लेकिन ये है, उन्होंने उस पत्र में भी ये बात रखा कि मेरा असहमत होने का जो अधिकार है आपसे, उस अधिकार को मैं तिलांजलि नहीं देने वाला हूं। तो दो तरह की धाराएं थी, उन दो धाराओं का मेल मिलाप पहले किया गांधी जी ने और देश को आज़ादी दिलाने में सतत प्रयास किया। लेकिन यह है कि दो व्यक्तित्वों की टकराहट थी और गांधी जी ने अपने शिष्य को भारत का प्रधानमंत्री बनाने में पूरा जोर लगा दिया था, इसमें भी कोई शक नहीं। जबकि पटेल उनके गुजरात से थे और पटेल के प्रति उनकी एक मित्रता का भाव था, लेकिन उन्होंने बड़े कैनवास पर सोचा कि जो विदेश है उसमें अपना पक्ष नेहरू ज़्यादा अच्छी तरह रख सकते हैं, नेहरू जो है देश में ज़्यादा लोकप्रिय हैं, जबकि जो पटेल हैं वो पटेल कांग्रेस का संगठनात्मक व्यापक ढांचा खड़ा करने में, उसको मजबूत बनाने में, उसके लिए पैसा लाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। तो उन्होंने दोनों को ध्यान में रख के अपने विवेक के अनुसार ये फैसला किया था, और पटेल इससे कोई असहमत नहीं थे। जो बात गांधी कह देते थे पटेल उसको तुरंत मान लेते थे।
हम आगे भी बात जारी रखेंगे कि जब कोई पटेल की बात करता है तो क्यों नेहरू को कमतर दिखाने की कोशिश होती है, और जब पटेल नेहरू की बात होती है तब क्यों एक तरह से पीछे चले जाते हैं पटेल। चलिए श्रोताओं को कार्यक्रम में शामिल करते हैं। हमारे साथ एक श्रोता जुड़ चुके हैं। जी, अपना नाम बताएं, कहां से बोल रहे हैं, जगह का नाम बताएं और इस विषय पे अपनी राय रखें।
नमस्ते सर, मैं योगेश भोईत एनटीपीसी भरूच गुजरात से बोल रहा हूं।
जी योगेश, स्वागत है आपका।
सर, मेरा ये कहना है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के कर्तृत्व नेतृत्व के नाम पर और उसके बहाने ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनकी विरासत को, उनकी विचारों को हड़पना चाह रही है या उसको कब्जा करना चाह रही है और उनको अपने विचारधारा से जोड़ना चाह रही है कि अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल जीवित होते तो ये ऐसा जिला चाहते कि वो भारतीय जनता पार्टी, जनसंघ और आरएसएस को समर्थन करते और कांग्रेस से दूर हो जाते, जबकि ये वास्तविकता कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ही धर्मनिरपेक्ष थे।
जी योगेश, आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये हथियाने की कोशिश है? आपको ये क्यों नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपनाने की कोशिश कर रही है पटेल को?
अपनाने की कोशिश कर रही है, रन फॉर यूनिटी करके देश को यूनाइट नहीं होगा। देश में एकता अखंडता के लिए एकरूपता, समरसता और सहनशीलता, सहिष्णुता ये विकसित करनी चाहिए विभिन्न धर्मी, बहुभाषी, बहुधर्मी, बहुजातीय लोगों के बीच में। जबकि यहाँ ये ऐसा नहीं कर रहे कि वो हिंदू कट्टर हिंदुत्व का एक प्रचार कर रहे हैं, जबकि सरदार वल्लभ भाई पटेल और गांधी जो थे वो सौम्य हिंदूवादी थे।
जी माफी चाहेंगे, शुक्रिया अपनी आपकी बात रखने के लिए। एक और श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं। जी अपना नाम बताएं और अपनी बात रखें।
जी मेरा नाम आदियोगी धनंजय सिंह है।
जी
हेलो।
जी यादवीर जी, अपनी बात।
और मैं समस्तीपुर जिले से बोल रहा हूँ।
जी
जी, ये जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो मूर्ति बनाई गई है, ये कोई उनके विरासत को हड़पने का या उनको इतिहास से निकाल कर वर्तमान में स्थान देने का कोई मुद्दा नहीं है, यह एक राजनीतिक स्टंट है। 600 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं मूर्ति पे, या सरकार उस 600 करोड़ रुपए से बेरोजगारों के लिए कोई कार्यक्रम शुरू कर या इंदिरा आवास योजना जैसे है उस प्रकार की सरदार वल्लभ भाई पटेल आवास योजना शुरू कर देती तो बहुत सारे गरीबों का भला।
जी बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़ी लाइन में डिस्टर्बेंस भी है, लेकिन इनकी जो बात है मधुसूदन आनंद जी, वो कार्यक्रम में शामिल होगी। इन्होंने कहा कि ये थोड़ा पब्लिसिटी स्टंट है, जिस तरह से बार बार बात कही जाती है सरदार पटेल की, चाहे वो मूर्ति बनाने की बात हो। ये 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब प्रचार कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के लिए, तभी से वो किसानों से लोहा मांग रहे थे कि एक मूर्ति बनानी है, तभी से ये बात चल रही है।
ये तो देखिए कि 2010 में से ये बात सामने आई थी और उन्होंने कभी छिपाया नहीं कि सरदार पटेल वो जो हैं गुजरात के ही गौरव नहीं हैं, वो देश के गौरव हैं और उनकी मूर्ति ये बनाना चाहते हैं। अगर जनता इससे सहमत है, सरकार का पैसा नहीं लग रहा है तो इससे ठीक है, लेकिन इसमें तो सरकार का पैसा लगा है। मूर्ति को जो अंतिम रूप दिया है वो चीन के सहयोग से मूर्ति को अंतिम रूप दिया गया है और वहाँ एक पर्यटक स्थल बना दिया गया है। तो ये कुल मिला के सरदार पटेल की लिगेसी से जुड़ने का एक पूरा प्रयत्न है कि देखिए हम, उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने भारत रत्न नहीं दिया, उन्होंने उनको खाशिए पर डालने की कोशिश की, लेकिन हम सरदार पटेल में बहुत आस्था रखते हैं और उन्हें आगे बढ़ाना चाहते हैं। मैं पूछता हूं कि आपकी सरदार पटेल में आस्था है, आपको गर्व है, बहुत ही खुशी की बात है, कांग्रेसियों को भी गर्व होना चाहिए और हर भारतीय को गर्व होना चाहिए, लेकिन आप ये बताइए कि आपके परिवार में क्या कोई एक भी ऐसा आदमी नहीं है जिस पर आप गर्व कर सकें? ऐसा क्यों है? सरदार पटेल तो वही सरदार पटेल हैं जिन्होंने नेहरू की हत्या के बाद, जिन्होंने गांधी की हत्या के बाद, क्षमा चाहता हूं, गांधी की हत्या के बाद आरएसएस पर प्रतिबंध लगा दिया था और जो इसको भारतीय जनता पार्टी को पसंद नहीं करते थे, उस समय जनसंघ के नाम था, बाद में हुआ वो, मतलब आरएसएस को पसंद नहीं करते थे। तो ये भी बात एक सत्य है। असल में क्या है कि राजनेता जो होते हैं और ऐसे जबकि कोई चीज़ बन रही होती है तो बहुत सी बातें कहती हैं। उन्होंने कुछ अपने काम की बातें पकड़ ली और उन काम की बातों को पकड़कर जो जो उनका सरदार पटेल का की पूरी आभा कांग्रेस को मिल रही है उस आभा की कुछ कुछ किरणें अपनी तरफ मोड़ने की कोशिश करके अपनाने की कोशिश।
लेकिन क्या आपको लग रहा है कि कांग्रेस उतनी तरह से जो आप आभा की बात कह रहे हैं आपको नहीं लगता कि सरदार पटेल को लेकर कांग्रेस भी कभी उतनी सहज या कितनी ओपन नहीं रही?
देखिए कांग्रेस को सहज लाभ मिलता रहा क्योंकि आज़ादी का आंदोलन तो कांग्रेस ने लड़ा और उसका सहज लाभ उसको मिलता रहा। लेकिन जो नेहरू परिवार का नेहरू गांधी परिवार का जिस तरह से सत्ता पर कब्जा रहा उसमें ये बात सही है कि उस परिवार को आगे बढ़ाने की कोशिशें बहुत हुई और दूसरी जो परिवार रहे उनको समुचित स्थान नहीं मिला। ये कांग्रेस की कमी रही। इस कमी का फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी उठा रही है। अब भी अगर कांग्रेस जो है चेत जाए और वो कुछ करके भी दिखाए, उनके आदर्शों को सामने रखे, उनके लिए कोई योजनाएं लेकर आए और बताए कि हम ये करना चाहते हैं तो कांग्रेस को फ़ायदा मिल सकता है।
चलिए कुछ श्रोताओं को कार्यक्रम में शामिल करते हैं। हमारा विषय है कि क्या पटेल की विरासत को बीजेपी हथियाने की कोशिश कर रही है या उनको उचित सम्मान दिलाने की कोशिश कर रही है, जो कि भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है। जी अपना नाम बताएं और अपनी बात रखें।
हाँ मैं मोहन सिंह काजला बोल रहा हूँ, काजला ये गाने जिला झुंझुनू राजस्थान से।
जी मोहन जी,
इसमें बात ये जी क्या जो इसने मोदी साहब ने ये जो काम किया है ना ये अपने लिए नहीं किया, सरदार जी के लिए किया है, पूरे देश के लिए किया है। सरदार पटेल मतलब एक उस टाइम के अंदर तो एक कांग्रेस ही थी, आजकल 20 पार्टी खड़ी होगी तो अलग अलग पार्टियों में इसको बांटना भी गलत है। ये 130 करोड़ जनता के आंख का तारा है। फिर दूसरी बात क्या इन्होंने जो मोदी साहब ने इनके लिए किया है ये पैसे लगाए हैं 2500-3000 करोड़, तो इसके अंदर क्या है साहब साल का 60-70 करोड़ रुपए की आमदनी है और कितने आदमियों को रोजगार इनके नाम के ऊपर मिला है ये बनाया है। और 20 साल के अंदर इसमें जो पैसे लगे हैं वो तो पूरे मतलब हो जाएंगे, गवर्नमेंट के आ जाएंगे, ठीक है।
लेकिन मोहन जी हम बात कर रहे हैं, मोहन जी आपसे ये जानना चाह रहे हैं, प्रतिमा की बात अलग है, हम बात कर रहे हैं विरासत की, कि आप सरदार पटेल को किस तरह से देखते हैं। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस ने उतना सम्मान नहीं दिया जो भारतीय जनता पार्टी इतना सम्मान दे रही है उनको? बात यह है
कांग्रेस को तो अभी याद आया है जब मोदी जी ने इनको इतना मान सम्मान दिया है और ये मतलब हकदार है और इसको जितना ऊंचा किया जाए पटेल जी को इतना ही कम है। जैसे पटेल जी के नाम पर कम से कम देश में 1000-1100 गाँव का नाम भी मेरे कहने का मतलब है सरदार पटेल नगर के नाम से बदल देना चाहिए।
जी बहुत बहुत शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए। एक और श्रोता है हमारे साथ, अपना नाम बताएं।
जी जी हेलो
जी, आपकी आवाज आ रही है, अपना नाम बताएं।
मैं मास्टर सतबीर सिंह जिला चरखी दादरी हरियाणा से बोल रहा हूं जी।
जी मास्टर जी बताएं क्या कहना है आपका, क्या लगता है आपको?
मैं ये कहता हूं कि जी सरदार पटेल वाकई उसे प्रधानमंत्री के हकदार थे, क्योंकि वो नहीं होता तो ने रियासतों का एकीकरण हो सकता था, पर उन्हें बहुत सी रियासतें टक्कर मिल जाती। बीजेपी जो अब सरकार इसको महान बना रही है बड़ी अच्छी बात है, उसको वो स्थान तो मिल रहा है तो कांग्रेस ने देश की कांग्रेस ने तो केवल उसको मीठा जहर दिया और उसकी खत्म हो गया वो, मैं ये कहना चाहता हूँ जी।
चलिए ये आपका कहना है, बहुत बहुत शुक्रिया चलिए अपनी राय रखने के लिए। एक श्रोता और है हमारे साथ, उनकी बात सुन लेते हैं। जी अपना नाम बताएं।
मैं डॉक्टर आर के गुप्ता नेत्रहीन घाटमपुर से बोल रहा हूँ।
जी डॉक्टर सर,
सरदार पटेल जो है एक व्यक्तित्व के धनी जिन्होंने बहुत बड़े कार्य किए, यद्यपि मैं मानता हूँ कि कांग्रेस ने उनको स्थान दिया लेकिन जो स्थान देना चाहिए वो इन्होंने नहीं दिया। अभी जैसा कि आपने बताया कि प्रियंका गांधी ने इस बात की आलोचना किया, ये मैं उचित नहीं मानता क्योंकि जो भी मोदी जी ने ये किया एक किसी की इज्जत बनाना और सम्मान देना एक बहुत बड़ी चीज होती है, क्योंकि उन्होंने सरदार पटेल के नाम पर ये बात जरूर अभी एक वक्ता ने कहा श्रोता ने कि सरदार पटेल ने को अगर बजाय इसके कॉलोनी बनवा देते या और अच्छा, ये बात सही है। किंतु जो भी मोदी जी ने ये कदम उठाया है कि मोदी जी ने सरदार पटेल की प्रतिमा बना करके, ये कोई उन्होंने अपने व्यक्तिगत के लिए नहीं, बल्कि सरदार पटेल जो कि गृह मंत्री रहे हैं इसीलिए उन्होंने उनका कद बढ़ाने के लिए यदि किया है तो ये खराब नहीं है, ये प्रियंका गांधी की भूल है और ऐसा नहीं उनको सोचना चाहिए, क्योंकि आलोचना प्रत्येक चीज को करना उचित नहीं होता है।
जी बहुत शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए। तो मधुसूदन आनंद जी, जिस तरह से बात हो रही है तो हम पहले भी चर्चा कर रहे थे और अधिकतर श्रोताओं का ये कहना है, वो भी एक आमने सामने रख रहे हैं, एक तरफ नेहरू को रख रहे हैं एक तरफ पटेल को रख रहे हैं, और कुछ का मानना है कि वो ज्यादा हकदार थे।
देखिए ये बात तो सही है कि 1946 में एक अंतरिम सरकार बननी थी और उसके अंदर का जो फार्मूला तय हुआ था उसमें ये था कि जो कांग्रेस का प्रमुख होगा, अध्यक्ष होगा, वो उस अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री बनेगा। इसके लिए मीटिंग हुई, उस मीटिंग में महात्मा गांधी शामिल थे, जवाहरलाल नेहरू शामिल थे, उस मीटिंग में मौलाना आज़ाद शामिल थे, कृपलानी शामिल थे, पटेल और नेहरू शामिल थे, और भी मतलब कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग थी। उसमें संयोजक के रूप में सबसे पहले कृपलानी जी आते हैं और वो ये बताते हैं कि देखिए कुल 15 कांग्रेस की राज्य समितियां हैं, प्रदेश प्रादेशिक समितियां हैं, उन 15 में से 12 ने पटेल का समर्थन किया है, एक समिति ने मेरा समर्थन किया है, एक ने मौलाना आज़ाद का समर्थन किया है और एक किसी और का था। तो बताइए क्या है ये सत्य गांधी जी के सामने रख दिया। गांधी जी ने नेहरू जी की तरफ देखा, बोले आपका क्या कहना है इस बारे में। नेहरू जी बिल्कुल चुप मार गए, कुछ नहीं बोले, जिसका मतलब ये लगाया गया कि नेहरू जी किसी भी हालत में पटेल के अंतर्गत काम नहीं करेंगे। हालांकि पटेल जो है उम्र में उनसे 12-14 साल बड़े थे। तो इसके बाद फिर दूसरी बार बात रखी गई और फिर कृपलानी ने अपना वो वापस ले लिया और गांधी जी ने उनको नेहरू को वहाँ का अध्यक्ष बनवा दिया और इस तरह से वो प्रधानमंत्री बने। लेकिन नेहरू कि जो योग्यता थी, उनकी जो क्षमताएं थी, उनको तो समझते थे गांधी जी, वो पटेल की योग्यताओं को भी समझते थे कि ये एक बहुत अच्छे संगठन करता है, ये देश का निर्माण करने वाले हैं और ये ही वो व्यक्ति हैं जो कांग्रेस के लिए पैसा लाते हैं, चूंकि बंबई में उनका कार्य क्षेत्र रहा था। तो उन्होंने कहा कि नेहरू जो हैं, बाद में उन्होंने किसी के सामने ही कहा था कि नेहरू जो है देश में उनसे ज़्यादा लोकप्रिय हैं, और दूसरा आज़ादी के बाद भारत का केस विश्व में रखने के लिए एक ऐसा आदमी की ज़रूरत होगी जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स समझता होगा और उसकी छोटी छोटी बातों को जो जानता होगा। इसलिए उन्होंने खुलेआम गांधी ने नेहरू का साथ दिया था। पहले भी 2-3 बार वो नेहरू का साथ दे चुके थे, अब उसके पीछे उनके अपना विवेक था, क्योंकि कम से कम नेहरू गांधी जी पर ये आरोप तो हम नहीं लगा सकते कि वो कोई भाई भतीजावाद या कोई रिश्वतखोरी करके उनका नाम ले रहे होंगे। वो विवेकपूर्ण फैसला था जिसे कांग्रेस ने बाद में सर्वसम्मति से प्रस्ताव उसको पास किया था।
जी चलिए कुछ श्रोताओं को शामिल करते हैं। विषय है कि क्या भारतीय जनता पार्टी पटेल की विरासत को हथियाने की कोशिश कर रही है या उन्हें इतिहास में उचित सम्मान दिलाने की कोशिश कर रही है। जी बताएं अपना नाम और अपनी बात रखें।
हेलो, मैं गुजरात से उस्मान गनी चौहान बोल रहा हूँ, विलेज हंसोट से।
जी उस्मान
जी, आपने जो शीर्षक दिया है वो बड़ा बेहतरीन है कि क्या मोदी जी पटेल की विरासत से छीन हथियाना चाहते हैं। बिल्कुल सही दिया आपने, वो इसलिए कि पटेल, सरदार पटेल, पंडित नेहरू, महात्मा गांधी, वो तो सब वर्ल्ड फेमस पर्सनालिटी थी, और ये जो मोदी साहब की आइडियोलॉजी है, उनके पास तो कोई स्वतंत्र सेनानी नहीं थे, उन्होंने तो आरएसएस को साथ दिया था, और ये कांग्रेस की पूरी आइडियोलॉजी को हथियाना चाहते हैं। दूसरा कि ये इन लोगों ने जो काम किए हैं वो कांग्रेस की आइडियोलॉजी पर कर नहीं रहे, लेकिन आइडियोलॉजी ले रहे हैं। मेरा ये कहना है, तो क्या ये सही है कि भाई सत्ता को हथियाना, आइडियोलॉजी को हथियाना, बाद में कुछ देश को हथिया लेंगे, क्या करेंगे कुछ पता नहीं, आप उसका मुझे जवाब दीजिए।
जी आपका जवाब देंगे हमारे साथ जो वरिष्ठ पत्रकार मधुसूदन आनंद है, लेकिन एक और श्रोता की हम बात सुन लेते हैं। जी अपना नाम बताएं।
जी अपना नाम बताएं।
नमस्कार सर, मैं आजमगढ़ से कृष्णानंद यादव बोल रहा हूँ सर।
जी बताएं क्या क्या कहना है आपका इस विषय पर।
इस बेशक सरदार पटेल साहब हमारे देश के एकता के बेशक बहुत बड़े पैरोकार थे, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी अपनी आइडियोलॉजी को जस्टिफाई करने के लिए पटेल जी का सहारा ले रही है, वो एक गलत तरीका दिखता है बीजेपी का। अपनी आइडियोलॉजी को अपने तरीके से इम्पोज करे, लेकिन इसने किसी एक स्वतंत्रता सेनानी को एक तरीके से उनको अपने भावनाओं को चीजों को जस्टिफाई करने के लिए उपयोग में लेना, ये गलत दिखाई देता है बीजेपी का एक नजरिया देखा जाए।
और जी, शुक्रिया, आपकी बात कार्यक्रम में शामिल हो गई है। जल्दी से हम एक और श्रोता की बात सुनना चाहेंगे। जी अपना नाम बताएं।
हमारा नाम बुच्ची चौबे मटिया हूँ, जिला गाजीपुर उत्तर प्रदेश।
जी
मैं ये कह रहा हूँ कि मोदी जी जो है सिर्फ सरदार पटेल को अपना मुद्दा नहीं नौटंकी कर रहे हैं।
आपको ऐसा क्यों लगता है?
हमको ऐसा लगता है कि आदमी बहुत बहुत बेईमान है, ये देश को बेच रहा है।
ये आपकी अपनी राय हो सकती है। बहुत शुक्रिया मधुसूदन जी, आपसे जानना चाहेंगे।
देखिए, एक तो पहली बात मैं ये कहूँ कि सरदार पटेल को अपना रहे हैं ये बात कहना, और सरदार पटेल का सम्मान करना चाहते हैं ये बात करना, ये दोनों एक ही बातें हैं। उसको अलग अलग ढंग से देखा जा सकता है, लेकिन है एक ही बात। क्या बात है असली? कि सरदार पटेल का चेहरा आगे करके ये बताया जा सके कि हम वो लोग हैं जो सरदार पटेल को मानते हैं। और सरदार पटेल कौन है? सरदार पटेल वो पटेल हैं जिन्होंने भारत का एकीकरण किया, 563 रियासतों को मिला के और हिंदुस्तान का गठन किया। सरदार पटेल के बारे में संक्षिप्त में मैं एक बात बताना चाहूँगा कि सरदार पटेल शुरू में ये इस बात के पक्षधर नहीं थे कि कश्मीर को लिया जाए, वो इस बात के पक्षधर थे कि किसी भी सूरत में हैदराबाद रियासत को नहीं जाने दिया जाएगा। कश्मीर पर बाद में उन्होंने वही बात कही जो कांग्रेस चाहती थी, लेकिन जब नेहरू ने जम्मू कश्मीर राज्य के दीवान थे एक आयंगर साहब, उन आयंगर साहब को अपना नुमाइंदा बना के वहाँ बिठा दिया और वो उनको रिपोर्ट देने लगे, और गलती से उसका टेलीग्राम एक पटेल के पास आ गया, तो पटेल ने आयंगर से पूछा कि आप किस हैसियत से ये बात कर रहे हो? उन्होंने कहा था अभी कुछ झगड़ा बहुत फसाद होने वाला है, 400 जीप फौरन आप जो है पंजाब से भेज दीजिए। तो उन्होंने किस हैसियत से आप ये कह रहे हैं? उन्होंने कहा मैं यहाँ कोई क्लर्क नहीं हूँ। तो उन्होंने कहा कि अगर आप क्लर्क नहीं हैं तो आप कम से कम, मैं आपसे कहता हूं कि यह मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। और इसकी चिट्ठी जो है वो इसकी बात जो है नेहरू को बता दी गई। नेहरू ने रोषपूर्ण चिट्ठी लिखी कि कम से कम कश्मीर में आप भी बोल मत करिए। तो इसका मतलब जो लोग ये कहते हैं कि कश्मीर का प्रश्न नहीं सुलझा, तो उसमें नेहरू ने खुद ये माना जाता है कि पटेल को काम नहीं करने दिया।
जी चलिए, आखिर में बहुत कम समय बचा, एक श्रोता की बात लेने की कोशिश करते हैं। संयमित भाषा में अपनी बात रखें। जी अपना नाम बताएं।
हेलो, हाँ सर, आलोक यादव आजमगढ़
से। जी आलोक जी, संक्षेप में कहें बात अपनी।
हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ सर, ये जो बीजेपी वाले ऐसा कर रहे हैं सर, ये कहीं ना कहीं सही कर रहे हैं। जो वो कांग्रेस वाले हैं इनकी विरासत को आगे नहीं बढ़ाने, तो अब बीजेपी वाले जो उनकी कम से कम उनके जो इतना अच्छा काम किए हैं।
हम आपकी बात समझ, ये कहना चाह रहे हैं कि अगर कांग्रेस के अगर कोई नेता हैं, तो जैसे कि पहले कुछ नेता कह रहे थे, अगर भारतीय जनता पार्टी उनको सम्मान दे रही है, तो इसको इस दृष्टि से क्यों देखा जाए कि वो कांग्रेस के नेताओं की विरासत को
नहीं? ये बात अगर वो कोई भी किसी महापुरुष का सम्मान कर रहा है तो उसका स्वागत ही होना चाहिए, लेकिन हमारे देश की जनता, जैसे कि आपके जो श्रोता हैं उनकी तमाम प्रतिक्रियाओं से पता चलता है, वो साफ साफ देख सकते हैं कि ये एक राजनीति हो रही है या अपनाया जा रहा है, तो ये उन पर छोड़ देना चाहिए। लेकिन सार्वजनिक रूप से अगर कोई उनको आगे बढ़ा रहा है तो उसका क्यों विरोध करना?
जी बहुत बहुत शुक्रिया मधुसूदन जी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। सभी श्रोताओं को भी धन्यवाद। उन श्रोताओं से क्षमा चाहेंगे जिन्हें समय कम होने के कारण कार्यक्रम में हम शामिल नहीं कर पाए। सुबह 6:30 नमस्कार भारत कार्यक्रम के साथ फिर हाजिर होंगे। आदर्श राठौर को सहयोगी दीपक जसरोटिया के साथ इजाजत दें। नमस्कार, शुभ रात्रि।